अब जरा आयत 6:6 में मूसा अलैहिस्सलाम की आजजी तो देखिए। ये होते हैं असल में तालिब इल्म, खतरा धड़का कह के कहीं मेरा नाम ना कट जाए और कोई मुझे अपने से अलग ना कर दे, मेरी कोई बात पसंद ना आई तो क्या बनेगा। सामने आ गया वो शख्स, वो जिसकी ज़रूरत थी, जिसको बुलाया गया। आने के बाद क्या कहते हैं, काला लहू मूसा, कहा उनसे मूसा ने, अंदाजे किया, काला मूसा भी आ सकता था, लहू मूसा में इज्जत है। उनसे बड़ी आजजी से, बड़ी मोहब्बत से मूसा ने कहा, हल अत्तबियो का, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी, इस शर्त पर, ये अला शर्तिया है, इस शर्त पर मैं आपके पास रह सकता हूँ, क्या अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क्या आप मुझे सिखाएं इसमें से जो भलाई आपको सिखाई गई। मेरा दिल कर रहा है कि यकीन करें इस एक जुमले के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश करूं। इससे खूबसूरत जुमला कोई तालिब इल्म बोल नहीं सकता इल्म लेने के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है ऑफिस में बैठे हैं मूसा अलैहिस्सलाम और आके बड़े अदब और एहतराम से कह रहे हैं, क्या आप मेरा नाम लिख लेंगे, मैं इस शर्त पे आपके पास आ रहा हूँ कि आप मुझे वो सारी भलाइयाँ सिखाएं जो कि अल्लाह ने आपको सिखाई हैं। ये होते हैं ट्रू सीकर्स ऑफ नॉलेज, तलब वाले यही होते हैं। मुझे अल्लाह ने बता दिया है, इसने आपको हिकमत दी, दानाई दी है, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं कुछ अरसा आपके साथ रह लूँ ताकि आप भी मुझे ख़ास इल्म दें। कोई रिजेंटमेंट नहीं है, कोई ईगोइस्टिक होना नहीं है, खुद को बड़ा नहीं के एहसान समझा, मान ही गए, हम आते नहीं हैं, शुक्र नहीं है आप करते, हम ना आते तो कौन आपसे आके सीखता, नहीं, आजजी ये असल में ज़रूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन सॉफ्ट बात की, अपने आप को ऐसे कर कर के दिखाया कि जिससे उनका दिल मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाए। लेकिन ज़रा जवाब तो सुनिए, कितना प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, काला, कौन बोले, उस्ताद, खिजर, जो भी थे, इन्ना कलन तस्तती अमाइया सब्र, उन्होंने कहा आप मेरे साथ रह कर हरगिज़ सब्र कर ही नहीं सकेंगे। देखिए ज़रा किस बात पे मूसा को एक किस्म का रिजेक्शन लेटर दे रहे हैं, सब्र। सबसे पहली शर्त, जो बंदा इल्म लेने आता है उसके लिए सब्र, सब्र के बगैर इल्म नहीं है और सब्र के बगैर नमाज भी नहीं है, याद रखिए। क्या कुरान में आता है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाती इन्नल्लाह मा साबिरीन। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को आज के दौर में देखिए, उनका नाम लिखने के लिए तैयार नहीं है ऑफिस वाले, क्यों? आज देखिए किसी भी इदारे में आपने अगर चले दुनियावी तौर पे भी दाखला लिया हो तो क्या शरायत होती हैं जी। आप पिछली जमात का रिपोर्ट कार्ड लाइए, स्कूल से आए हैं तो स्कूल वालों का करेक्टर सर्टिफिकेट लाएं, दो पासपोर्ट कापियाँ लाएं, 5,000 रुपये फीस जमा कराएं, प्री रिक्विजिटिस होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की। फिर वो कहता है नहीं जी, आपका तो इसमें वो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं। आज दुनिया में तालीम लेने के लिए कितनी डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है और कभी एक पेपर नहीं मिल रहा, उसको ढूंढो उधर, इधर सिर्फ एक चीज़ है, सब्र। और मैं इस वक्त इस सब्र को जिस रंग में ले पा रही हूँ ना, वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। क्योंकि तालिब इल्म का सब्र सिर्फ किताब पढ़ने और याद करने का सब्र नहीं होता, 2 घंटे बैठने का सब्र नहीं होता, हर हफ्ते में एक टेस्ट का सब्र नहीं होता, हर दिन सबक याद करके अगले दिन ग्रुप्स में सुनाने का ही सब्र नहीं होता, बल्कि तालिब इल्म का सब्र रोज़ वक्त पे आने का सब्र भी होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन को फुल करना, उनको मानना, इंतज़ामिया से तआवुन करना, हर मौके पे, हर बात पे करना। और यहाँ पता चल रहा है कि एक अच्छी मैनेजमेंट का ये नुक्ता है कि जब कोई इंक्लाइंड है, जब झुका हुआ है कोई आपकी तरफ आने के लिए, तो उसी दिन उसको सारे रूल्स बता दें। और साथ ही रियायत क्या करते हैं, वो कई फतस्बिरू, और वैसे आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं, अला मालम तो हैत बिही खुबरा, उस चीज़ पर जिसकी आपको पूरी खबर ही नहीं है। देखिए अब ये खिजर का ये जुमला कितना जुमानी है, खुद ही रियायत भी दे रहे हैं कि भाई आपका तो सोर्स ऑफ नॉलेज शरीयत है, अभी आप मेरे साथ रहेंगे, कुछ अजीब चीज़ें देखेंगे। खबर जो है ना, खबर से बड़ी चीज़ होती है, खबर न्यूज़, और खबर बहुत बड़ी खबर, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, انجوجل خبر، یعنی جو خبریں ابھی آپ کو میرے ساتھ رہ کے ملنے والی ہیں تو آپ کو تو وہ بڑی بری باتیں لگیں گی، میں جو کام کر رہا ہوں وہ خلاف شریعت لگیں گے، اور میرا جو مقصد یا غرض ہے اس کو کرنے کی وہ آپ جانتے کوئی نہیں، تو لہٰذا واقعی آپ صبر کرنے والے نہیں ہوں گے. لیکن موسیٰ کی کمٹمنٹ، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ نے کہا آپ مجھے ان شاء اللہ صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی. نوٹ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے اس میں، جب صبر کرنے کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ نے ان شاء اللہ کہا، دیکھیں ادھر ہے ان شاء اللہ صابرا، لیکن نافرمانی نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ ان شاء اللہ نہیں کہا. پڑھوں دوبارہ آیت، قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرم ولا آسی لکا امرا ان شاء اللہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی موسیٰ نے صبر کے ساتھ ان شاء اللہ کہا، نافرمانی نہ کرنے میں نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اسی وعدے کی خلاف ورزی آپ سے ہوئی جس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا. یہاں پھر وہی بات یاد کیجئے جو اسی سورت کی آئے 23-24 میں آپ پڑھ چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. پیچھے بھی ذکر ہوا تھا، اب یہاں پھر نوٹ کر لیں، یہ سورت انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے بھری ہوئی سورت ہے. شاہ کیا ہے؟ تقدیر، قسمت کے فیصلے ان اور ماں کے بیچ میں گھوم رہے ہیں. کیا پتہ چلا؟ تقدیر کے فیصلوں کو مانو کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. قالا، کہا کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. فإن اتبعتنی، بس اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، فالو می، سو میری شرط سن لیں، فلا تسألنی عن شیء، بس مت پوچھئے مجھ سے کسی بارے میں، کوئی سوال نہ کرنا مجھ سے. کب تک؟ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ سے نہ کروں، یعنی جب تک میں بات نہ چھیڑوں آپ نے کچھ نہیں پوچھنا، جب میں مناسب سمجھوں گا آپ کو بتا دوں گا. اچھا، یہاں پھر دیکھیں موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی نیم رضا دی. اس کے بعد موسیٰ کہہ سکتے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آگے نہیں ہوا. ہوتا پتہ کیا، جب کسی کو شروع میں بھی اس طرح کی شرائط دی جاتی ہے نا تو اسٹوڈنٹس بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ نے جب رجسٹریشن کرایا ہوگا ادھر، جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، بغیر رجسٹریشن کے آپ ساری زندگی آتے رہے، آپ کو اسکول سے کوئی نہیں روکے گا. بائے دا وے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لسنرس کے لیے جو اس وقت بھی گھر سے سن رہے ہیں، آپ اسکول میں آ کر بیٹھنے کے پیسے نہیں دیتے. اگر یہاں کوئی فیس دیتے ہیں لوگ تو وہ ایکسٹرا سروس کے دیتے، آپ کا سبق سنا جائے، آپ کی گروپنگ ہو، آپ کو ٹیسٹ دیے جائے، اس کی ایک ڈاکیومنٹیشن ہے. یہ جو میں آپ کو اس وقت پڑھا رہی ہوں، واللہ ہی اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ سب کے لیے فری ہے. آپ سارا سال ایسی جیسے سورت کہف میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ منڈے سے بھی آئیں گے، سورت مریم صرف 3 دن میں ہونے والی ہے، اور اس میں جو کچھ آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے واہ یہ تو سورت کہف میں آئی نہیں تھا. تو ایوری ون از ویلکم، پورا سال آپ آ سکتے ہیں. مت سوچیے کہ آپ سورت کہف کے لیے آ رہے ہیں تو آگے نہیں آتے. اس اسکول میں اندر آنے کی کوئی فیس نہیں ہے، ان کرسیوں پہ بیٹھنے کی کوئی فیس نہیں ہے، اس علم کی کوئی فیس نہیں ہے. جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کا صدقہ ہے، اور وہ ریگولر اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ بلڈنگ کے خرچے جو کچھ ہے، اور ایک سب سے بڑی بات آپ کی لائبلٹی ہے، اور صرف اس پہ یہ اسکول چل رہا ہوتا تو اب کب کا بند ہو چکا ہوتا اللہ کے حکم سے. تو لہٰذا فیس از لاسٹ تھنگ، نہیں دینا. کوئی پورا فل ٹائم کرنا چاہتا ہے، ٹیسٹ بھی دینا چاہتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، ایک فارم بنا ہوا آئیے فل کر دیں کہ ہم سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، نہیں دیتے. کوئی دوبارہ آپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ اسکول پیسے جمع کرنے کی مشین نہیں ہے، یہ علم دینے کی جگہ ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو کوئی ہرڈل ہو اس معاملے میں تو وہ اس کے بارے میں مزید علم لے لیں. خیر، بات ختم ہوئی. اب دیکھیے یہ پہلا دوسرا دن ہے سفر کا، علم کا. فن تلقا، دونوں چلے، ڈے ون کورس کا. حتی اذا رکیبا، اب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. آپ نے بھی کشتی میں پاؤں رکھا تھا اس کورس میں داخل ہو کے. کتنی شرطیں، اس کورس میں چھٹی نہیں کرنی، اس کو آسان درجے پہ کرنا ہے، اس میں پچھلی کمیاں دور کرنی ہیں. لیکن کیا ہوا، فس سفینہ تھی، اب وہ کشتی میں بھی بیٹھے، پہلی چیز ہی نہیں استاد کی پسند آئی. کیا ہوا، استاد نے کیا کیا، خرقہ، کشتی کو توڑنا شروع کر کے تھا. دیکھا ان کے تو کال فیل میں تضاد ہے، دور سے تو یہ بڑے اچھے تھے، کلاس میں بیٹھ کے پتہ چلا یہ تو بڑی سختی کر رہے. یعنی خضر نے اس کشتی کو خرق، اب خرق کو غرق کہہ لیں، ऊपर जैसे वो आपके बच्चे नहीं ये टेबलों पे कर रहे हैं आजकल काफी कुछ, वो देख लीजिए, निशान डाल देना, कहीं से छील देना, कहीं से उखेड़ देना, कहीं पेन से कुछ लिख देना, शिगाफ डाल दिया। हजरत मूसा ने इनकी सवाल ना करने वाली शर्त तस्लीम की, दोनों सफर पर रवाना हो गए। जब वो दरिया पार करने के लिए कश्ती में सवार हुए, यहाँ एक नोट करें, यूशा किधर गए? पीछे भी फन तलक आता, वो तो मूसा और यूशे थे, यानी मूसा का शागिर्द साथ था, लेकिन अब जब मूसा को अपना उस्ताद मिला तो शागिर्द को कहा बाहर बैठिए। ये भी अमल का नुक्ता, नहीं समझे? जब उस्ताद अपने उस्तादों के साथ होते हैं ना, तो फिर शागिर्दों को जरा बाहर ही रहना चाहिए। दिल तो बड़ा करता है कि हमें भी साथ लेके बैठे, हम देखें इनके उस्ताद से इनको कितनी डांट पड़ती है। तो कोई पागल है आपको साथ लेकर जाएगा? है उधर तो जाके कहने मारे मुझे, डांटे मुझे। अगर आपने सुन लिया उनके उस्ताद को उनको डांटते हुए, कल आपने उनसे डरना? उन्होंने कहना ये वो हैं जिनको इनके उस्ताद से डांट पड़ती है। तो भाई यही तो सीख कर आए हैं कि मुझे भी डांट पड़ी है, तुम्हें भी डांटूँ। नहीं समझ आई? लेकिन यहाँ से अब देखिए ऐसे लगता है कि यूसुफ बिन नून मंजर से ही हट गए। यहाँ भी समझिए, देखिए डिस्टेंस के एक दर्जे, देखिए कहाँ कब किसको कितना क्लोज करना है। इसमें फिर अमल का नुकता है, किसको कितना क्लोज करना है, कब बात करनी है, कब नहीं करनी, सर पे चढ़ा लें या सर से ही उतार दें, ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं होती। बेहतरीन उस्ताद वो है जिसको पता होना चाहिए कि किस बात का जवाब देना है, कब देना है, कब मैंने सुननी है और कब ना सुनी तो पता नहीं इसने फौती हो जाना है, तो बेहतर के सुन लो। हिकमत के साथ लोगों को डील करना सिखाया जा रहा है इस वाक्य में। और फिर उसके बाद आप देखिए कि कश्ती का जब ये सारा मामला हो गया, मूसा तो चुप ना रहे, काला खरकता हाल तोगरी का हला, ये आपने क्या कर दिया भाई, क्या आप इसको फाड़ें ताकि इसके अहल जो हैं जो इसमें सवार हैं इनको गर्क कर दें, लकद जीत अशै या निमरा, ये तो बड़ा ही गलत काम हो गया, ये तो अच्छा काम नहीं किया। उस्ताद बोले काला मकुलस्तती माई ये सब्र, मैंने कहा ना था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से ही वो रूल्स तोड़ने की बुनियाद पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जितने भी वादे किए जो किए, लेकिन शरीयत की खिलाफ वर्जी होते देखकर नहीं रुक सके। देखिए मूसा नबी थे और नबी का काम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वादे कर रहे थे उनसे, उस वक्त मूसा को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा उस्ताद कोई खिलाफ शरीयत काम भी कर सकता है, क्योंकि बाज़ लोग यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नेगेटिविटी का एहसास रखते हैं, कहते हैं देखो मूसा अलैहिस्सलाम अपने उस्ताद पर एतराज़ कर रहे हैं। उस्ताद पर एतराज़ नहीं कर रहे, गलत काम को देखकर बड़े अच्छे तरीके से उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि मूसा भी सोच यही रहे थे कि ये कभी भी इस काम से हटेंगे नहीं, यहाँ ये मामला नहीं होगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात से ये पता चल गया कि वो गलत चीज़ को देखकर चुप ना रह सके। अब आप देखिए कि इस सारी बात को अगर आप और मैं अपने ऊपर लें, हमारे सामने कितने ही गलत काम लोग करते दिखते हैं, तो क्या फिर आप और मैं चुप रहते हैं? फिर हम बोलते हैं? फिर हमारी ज़िंदगी का क्या मामला होता है? ये हर एक देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो किसी जगह बुरा काम गलत काम होता देखे फिर उसको रोके, हाथ से रोके, जुबान से रोके, नहीं तो फिर दिल से रोके, और ज़ालिका दफ़ुल ईमान, ये बड़ा ही कमज़ोर दर्जा है ईमान का। यानी समझ लो कि अब इसके बाद समझ लो कि ईमान बीमार हो चुका है और फौत होने वाला है। गूंगे शैतान बनकर गलत चीज़ों को चुप करके आ जाना ये बात दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा उस्ताद की ये बात कि नकलन तस्तती, और इसमें भी जोश थे कि इन नकलन, लन जो होता है ना नेवर के मानों में आता है, ला नहीं आया, यानी उस्ताद को समझ आ गया कि आप मेरे साथ सब्र कर भी नहीं सकते, मेरी मुसाहिबत बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ एक और जुमला भी है, उस्तादों के साथ रहना जहाँ एक ऑनर है वहाँ एक सब्र तलब काम भी है, वो आपकी गलत सही को ज़रूर टोकेंगे। दोस्तों के झुड़मट में आप बड़े खुश हैं, वो तो गलत चीज़ों पे तारीफ़ें करते दिखेंगे, हकीकी उस्ताद आपकी गलत चीज़ पे कभी तारीफ़ नहीं करेगा। और इसी तरह आपको बुरे काम पे मजबूर कर सकती हैं दोस्तें, लेकिन उस्ताद नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ आपको मुझे क्या बता रही है कि इल्म का सफ़र सब्र का सफ़र है। एक दो आयतों के बाद आपका पारा पूरा हो रहा है, और मैं सोचती हूँ कि पारों की तकसीम भी बड़ी खूबसूरत है। एक सोचने का अंदाज़ दिया जा रहा है कि देखो तुम अपने आप को इस इल्म के सीखने के लिए तैयार कर लो। खैर अभी पहला मामला था तो बात चुप हो गई, मूसा ने सॉरी कर दी। क्या बोला मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस्ताद ने ये जुमला बोल दिया कि देखें आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे और साथ ही दूसरी बात क्या कह दी, قال لا تؤاخذني بما نسيت. لا تؤاخذني क्या है, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं एक्सक्यूज करता हूँ. بما نسيت यानी मुझे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए जो मैं भूल गया. ولا ترهقني من امري يسرا और मेरे मामले में ज़्यादा सख्ती ना कीजिए. बड़ा प्यारा जुमला है, मैं नया नया अभी इल्म के रास्ते का राही बना हूँ, मुझे अभी रूल्स के ऊपर इतना अबूर नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा पकड़े ना, मैं कोशिश करूँगा आइंदा ऐसे ना करूँ. खैर बात आई गई होगी, ज़्यादा बहस नहीं हुई. फ़न तलका, यहाँ तक कि वो दोनों चल पड़े, कौन उस्ताद और शागिर्द, दोनों निकले. अब क्या हुआ, उससे भी बड़ा काम हो गया. इज़ा लकिया ग़ुलामन, जब दोनों ने मुलाकात की एक लड़के से. ग़ुलाम उर्दू में तो ग़ुलामी के लिए आता है, अरबी में टीनेजर, अर्ली टीनेजर, 10-11 साल के करीब का बच्चा. फ़कत लहू, तो खिज़र ने उसको कत्ल कर दिया. फिर मूसा खामोश न रहे. क़ाला क़तलता नफ़सन ज़कियतन बग़ैर नफ़सिन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने कत्ल कर दिया एक मासूम जान को बग़ैर किसी जान के बदले, यानी उसने तो कोई गुनाह किया नहीं, किसी ने खून नहीं बहाया, किसी का बहाया नहीं, आप फिर कत्ल कर चुके. लका जी तशैयन नुकरा, ये तो आपने बड़ी नामाकूल हरकत कर दी. नुकरा मीन अननोन, मुनकर लफ्ज़ भी इसी से ही है, नुकर यानी अक्ल में नहीं आ रही, अनयूजुअल बात आपने कर दी. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, खिजर ने कहा क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे से सब्र नहीं करेंगे. आप मूसा बोले, قال ان سالت كان شيئا بعدها, ये है मूसा का खुद ही जान छुड़ाना कि मैं इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकता. कहने लगे, अगर आपसे अब मैं सवाल करूं कुछ बाद दहा इसके बाद, फला तुसाहिबनी, फिर आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा, यानी मेरी इस भूल को आखिरी समझे. तीसरी बार अगर कर दिया तो आप मुझे साथ ना रखें. कद बलग तमिल लदुन्नी उज़रा, आप पहुंच चुके हैं मेरी तरफ से हद उज़र को, यानी आप अगर आप मेरा नाम काट दें तो मैं मान लूँगा कि मेरा ही कसूर था, आपका कसूर नहीं. कहा ठीक है. फन तलका, फिर दोनों चल पड़े. हत्ता इज़ा तया अहला कर यतिन, यहाँ तक कि जब दोनों आ गए बस्ती वालों के पास. निस्तत अमा, खाना तलब किया उनसे. अलिफ सीन तार लग जाए, तलब टू सीक, आगे क्या है, ताम, खाना. खाना मांगा, ये वो दौर था कि मुसाफिरों के पास होटल मोटल तो होते नहीं थे, बस्ती वालों ने खाना देना होता था. खाना ना दिया, अब क्या हुआ, कहा अभी हमें खाना दे दो, हम भूखे हैं. फ़अबऊ, सब ने इनकार कर दिया, बड़ी भूखी थे कौम या बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, इनकार कर दिया. आई युदय्यिफू हुमा, कि इनकी मेहमान नवाजी करें. एक बंदे ने भी पूरी बस्ती में से खाना ना दिया. फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यन्क़द्दफ़ अक़ामा, तो इन दोनों ने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते. आप ये देखिए, फिर भी मशवरे देते हुए नहीं रुक रहे, कि ऐसे बुरे लोग जिन्होंने खाना तक खिलाने से इनकार कर दिया, बग़ैर मुआवजे के आपने उनकी दीवार ठीक कर दी, तो चले आप कुछ खाना ही ले लेते, कुछ पैसे लेते जाके हम उसका खाना खरीदते. अब उस्ताद बोले, قال هذا فراق بيني وبينك, ये है अब आपकी मेरी जुदाई का वक्त. बड़ा ही कड़वा जुमला, दुआ करें कभी आपको मुझे अपने किसी उस्ताद से ये जुमला ना सुनना पड़े. अपनी तबीयत और अपने मुकाम के अतबार से उस्ताद ये जुमला आराम से नहीं बोलते. जब कह दें कि आपकी मेरी जुदाई का वक्त, आपका मेरा अब साथ नहीं है, आई हैव नथिंग विद यू, अब मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं, जो आप करते हैं करें, जो आपको देना था दे दिया, ले लिया, अब आप जाने और आपका रब जाने, जुदाई का वक्त है. हाँ लेकिन सौनबियों का भी तावीली मालम तस्तती अलैहि सबरा, लेकिन मैं आपको इन चीज़ों की असल बताए देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके. क्या बताया मूसा अलैहिस्सलाम को उस्ताद ने, कि अब आपका नाम तो काट दूँगा, आपको मेरे साथ मज़ीद तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इन सारी चीज़ों की हकीकत मालूम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा. इससे क्या पता चला कि जब किसी को छोड़े तो झूठ झूठ बोल के ना छोड़ें कि अच्छा जी ये तो मेरे ऐसे एक्चुअली ये थी वो थी बात, क्या बल्कि उसकी हिकमत बताएं. क्योंकि देखिए जहनों में खलश रहना ये दूरियों को पैदा करती है, ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती हैं. तो बहरहाल यहाँ तक एक किस्सा पूरा हुआ. मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इल्म लेना था ले चुके, उस्ताद के साथ सब्र कर ना सके ना कर सके, और बीच में बोल चुके. लेकिन यहाँ तक जो बात आखिरी हिस्से की थी, इसमें से भी एक दो पॉइंट्स अपने लिए इल्म के नोट कर लीजिएगा कि उस्ताद ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौका जो दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सब्र करते तो फिर हमें इसी किस्म की और बातें भी उनसे मिलती और हम उनसे कुछ और खैर भी तलब कर लेते। यकीन कीजिए, ज़िंदगी का ये असूल है, अगर आप थोड़ा मज़ीद सब्र कर लेते तो आप उस इज़्ज़त और शोहरत और कामयाबियों के जगहों पे पहुंच चुके होते जहां हर एक नहीं पहुंचता। जैसे निहारी बना रहे हैं, सारे काम कर चुके हैं लेकिन अभी आटा कच्चा है, अभी शोरबा पूरा नहीं सूखा, गोश्त ज़रा सख्त और चूल्हा बंद कर दें तो कोई नहीं आपकी निहारी खा कर कहेगा कि आपने किससे सीखी है। लेकिन अगर आप थोड़े सारे मरहले आखिर के 15 मिनट के पूरे करके उस पर धनिया लहसुन प्याज जो डालना डाल के बंद करेंगे, जो खाएगा पूछेगा आपने कहाँ से सीखी। ये है तालिब इल्मों का एक बहुत बड़ा फितना, कच्चे इल्म के साथ राज़ी हो जाते हैं, अधूरे इल्म के साथ मुतमईन हो जाते हैं और बहुत सारे अधूरे इल्म के साथ दूसरों को सिखाने लग जाते हैं। वो तो वही बात है कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम हकीम ख़तरा ईमान। और अधूरे इल्म के साथ सवाल पूछना, जैसे कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का दिख रहा है, ये मजीद इल्म का दरवाज़ा बंद कर देता है। जिस तरह आप इंग्लिश में कहते हैं ना, जंपिंग टू द कंक्लूजन, अगली बताए बात, अगली बताए, बीच में सवाल नहीं करने चाहिए। इससे उस्ताद का रब्त भी टूटता है और आप अपना नुकसान भी करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या पता चलती है, जो सारी चीज़ है कि एक चीज़ होती है कम्प्लीशन और एक होती है रिक्वायरमेंट। कम्प्लीशन के आपने कोर्स पूरा कर लिया, जिस दिन तकमील होती है सबको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, जी ये पूरा कर चुके, बट क्या आपने उसे इक्वायर किया है, ये हर एक का फ़र्क होता है। हमेशा दुआ करें कि कंप्लीट होने के साथ साथ एकॉम्प्लिशमेंट भी हो, हमारे अंदर बेहतरी भी आए। और एक और चीज़ इस हिस्से से पता चलती है कि जैसे हिज़र की कुछ चीज़ें मूसा को समझ नहीं आ रही, इसी तरह उस्ताद एक ऊंचे मुकाम से देख रहा होता है, उसकी नज़र दूर की होती है, शागिर्द नीचे होते हैं, उसको वो चीज़ नहीं दिखती। इसलिए बेहतर है कि वो उस्ताद की फरमाबरदारी करें। कई ज़िंदगी में ऐसे इश्यूज़ आते हैं, टाइम कम करें, ज़्यादा करें, दिन बढ़ा लें, आगे कर लें, पीछे कर लें, वीकेंड पे आ जाए ना आए, उस वक्त शागिर्द को क्या चाहिए कि इनको मुझसे ज़्यादा पता है। ये किसी तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कर रहे होंगे ना, तो हर जगह जाके दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और हमें तो ये कहा था और अब ये हो गया और ये कहा तो वो की हो गया। फिर इसी तरह से एक और चीज़ याद रखें कि इल्म के मोती चुनना बहुत मुश्किल है। आप कंकर जमा करना चाहें नीचे जाते हुए, जितने मर्जी घर में झोली भर कर ले जाएं, कंकर और पत्थर जमा करने बहुत आसान है लेकिन हीरे मोती जमा करने के लिए कीमत देनी पड़ती है। इसी तरह इल्म के मोती चुनना ये बेसब्री के साथ नहीं हो सकते। मांगना और चीज़ है, तलब करना कोई और चीज़ है। अगर आपका अंदर खूबसूरत है ना, तो आप बेहतरीन तरीके से उससे फ़ायदा उठा लेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी समझ आती है, और कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये सारा सफ़र मूसा के मुकाम को नहीं कम करता, क्योंकि जिसमें मज़ीद इल्म हासिल करने की तलब और तड़प होती है ना, ये उसके इल्म के जज्ब करने की कैफियत है। खाना खा के सोए थे रात को, सुबह उठे फिर भूख क्यों लग गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रात को खाना हजम हो गया। किस दिन सुबह उठ के खाया नहीं जाता, जब खाना स्टक हो गया। जिनका पिछला इल्म स्टक हो जाता है ना, वो मजीद इल्म नहीं ले सकते। ले तो लिया, पढ़ तो लिया, और कितनी दफ़ा, कब तक, मरते दम तक, जैसे खाना मरते दम तक है। अगर आपके अंदर इल्म की और तलब कम हो गई है ना, तो माजरत के साथ आपका इल्म कमज़ोर हो रहा है, आपका स्टमक अब लूज़ हो रहा है, आपके अंदर हज़म की ताकत नहीं है। आपको तक इमाम मुजाहिद हज़रत इब्ने अब्बास के शागिर्द थे, 30 मरतबा उनसे कुरान सीखा। कहते हैं एक दफ़ा इल्म लिया और 29 दफ़ा मैंने अदब सीखा। इमाम मालिक भी यही कहते हैं, कहते हैं मैंने अपने उस्तादों से पहली दफ़ा इल्म लिया था और उसके बाद अदब लिया, क्योंकि इल्म के बग़ैर अदब और अदब के बग़ैर इल्म दोनों ही बेकार हैं। इल्म हो और अदब ना हो, आपकी शख्सियत खूबसूरत नहीं होगी। अदब बड़ा है, ज़ाहरी तज़ीम बड़ी है, तो आप शिर्क और बिदत तक पहुंच जाएंगे उस्तादों की तज़ीम में, जी हजूरियों पे आ जाएंगे। जी यार,
बार बार मसला सलाम सवाल करते थे, यही वजह से कि उन्होंने
जी देखिए कि ये जो सब भी हो रहा था ना, ये भी अल्लाह की मशीयत से ही हो रहा था। अल्लाह सुबहाना तआला मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें कई चीज़ें दिखा रहे थे। देखिए वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह का हुक्म होता है। मैं तो हर चीज़ से ये सीखती हूँ कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें ये पढ़ने का मौका दे दिया।